मान सुशांत हूँ विवर्धमान महान समय साधन सीजन पृष्ठ 196 पिछली 10 गाथाओं 2 कलशों के बाद जो आचार्य जयसेन की 3 गाथाएं प्राप्त होती हैं उनकी चर्चा चल रही है और उनके बारे में अपने 4 कमेंट्स पढ़ लिए थे। अभी 5वां है, चौथे से चलाते हैं। प्रथम गाथा में शुद्ध पद का अर्थ द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित किया और तीसरी गाथा में शुभाशुभ संकल्प विकल्पों से रहित किया। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि पहली गाथा में संग माने परिग्रह को छोड़ने की बात है और तीसरी गाथा में पुण्य भाव को छोड़ने की बात है। संग में बाह्य पदार्थ और रागादि विकार सभी आ जाते हैं तथा द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म में भी सभी बाह्य परिग्रह और रागादि भाव रूप अंतरण परिग्रह ये सभी आ जाते हैं। संघ को छोड़कर, तो संघ को छोड़ के कहा तो उसमें उन्होंने नो कर्म रूप पर द्रव्य ज्ञानावरण आदि रूप कर्म भी पुद्गल के परिणाम और आत्मा के विकारी परिणाम रूप भाव मोह, तो इस तरह पर द्रव्य और विकार इन सभी से मुक्त आत्मा कहा। इसलिए उन्होंने संघ का अर्थ किया है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहे। दूसरी जगह उन्हें अकेले विकल्पों से रहित बताना था इसलिए रागादि भाव रूप अंतरण परिग्रह इसकी बात करी। अब 125वीं गाथा में यह कहा था कि जो 3 गाथाएं हैं ना उन पीछे उत्तरण चल रहे हैं, क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध है, मन में उपयुक्त आत्मा मान है, माया में उपयुक्त आत्मा माया है, लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ है, माया और लोभ ये चारों कसायों से अभेद मानकर ये बात की जा रही है। प्रवचन सार में ऐसी गाथाएं शुरू शुरू में ही आती हैं, 8, 9, 10, 11 में आती है ये बात। शुद्धोपयोग से युक्त आत्मा शुद्ध है, शुभोपयोग से युक्त आत्मा शुभ है और अशुभोपयोग से आत्मा अशुभ है। ऐसे इस गाथा में 4 कसायों से आत्मा क्रोधी है ऐसा नहीं कह रहे, आत्मा ही क्रोध है। तो आत्मा ही क्रोध कहा तो अशुद्ध निश्चय नहीं लग गया, पर आत्मा को क्रोधी कहते सद्भूत व्यवहार उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं लग जाता। एक 126वीं गाथा में यह कहने वाले हैं कि जो आत्मा जिस भाव को करता है उस भाव का कर्ता होता है और ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय। 125वीं गाथा में क्रोधादि रूप अज्ञानमय भावों की बात तो आ गई थी पर ज्ञानमय भावों की बात नहीं आई थी, अतः उन उक्त 3 गाथाओं में ज्ञान भवमय भावों की चर्चा की गई। आगे अगली जो गाथा में क्या कहने वाले हैं, अब ज्ञानमय भावों की बात करने वाले हैं। तो पिछली गाथाओं में जिनके बारे 3 गाथाएं लिखी हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय होते हैं ये बात तो बहुत विस्तार से आ गई थी, कि ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं ये नहीं आई थी। तो अब गाथाओं में आगे वो आने वाली बात है, इसलिए वहां पर क्रोध मान आत्मा क्रोध है, मान वाला आत्मा मान है, मान से माया से प्रणमित आत्मा माया है, ये चर्चा वहां पर इसलिए की है। देखो 65वां कलश माने कि हर जीव में प्राणमन की शक्ति स्वभाव भूत है और उसमें किसी प्रकार के अंतराय की संभावना नहीं है। कोई निमित्त होता है और कोई निमित्त नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई जीव है उसके प्राणमन को रोक दे ऐसी ताकत किसी में किसी भी द्रव्य में नहीं है। इसका नाम है निरंतराय। और जो पुद्गल के बारे में निर्विघ्न कहा था, निर्विघ्न अंतराय और विघ्न लगभग एक ही चीज है, तो कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का प्राणमन स्वभाव है, वो किसी कर्म के उदय से प्राणमित नहीं होता। राग रूप प्राणमित हुआ उसमें कोई कर्म निमित्त हो सकता है, लेकिन राग रूप प्राणमित होने में दो चीजें हैं, एक प्राणमित होना और एक राग रूप होना। तो उसमें से वो प्राणमन तो उसका स्वभाव है और राग रूप होना ही वो उपाधिक भाव है, क्योंकि नैमित्तिक भाव है इसलिए ये विभाव है। उस राग में निमित्तता है कर्म के उदय की, प्राणमन में निमित्तता नहीं है। और अपन ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि राग रूप प्राणमन, अब इसमें रागाधिक निमित्त है, तब वो प्राणमन अपने वो प्राणमन में निमित्त समझ लेते हैं। क्या फिर एक दफे कहता हूं, ध्यान से सुनना, कि एक है प्राणमन होना एक एक काम, और एक है राग रूप होना, दो काम है। तो वो कहते हैं प्राणमन में पर के निमित्त की रंजमात्र आवश्यकता नहीं है, और राग रूप होने में जो कर्म के उदय है, जो मान लो लोभ नामक कर्म का उदय, माया नाम का कर्म का उदय, और जो जो रति शोक जो भी है उसमें, उन कर्मों के उदय के निमित्त की अपेक्षा है। अब हम उसे भाषा में ऐसा बोलते हैं कि रागादि रूप प्राणमन, अब राग रूप होना, तो हम एक काम मानकर और राग के साथ उस प्राणमन को भी नैमित्त कार्य मान लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे तो लोग यही कहेंगे हाँ राग रूप प्राणमन होता दिखा रहे, यही बोलते क्या नहीं बोलते। अब वो कहते हैं कि दो हिस्से हैं इसमें, एक प्राणमन अलग है जो उसका स्वभाव है, वो तो स्वभाव भूत प्राणमन की शक्ति उसमें है, प्राणमन तो होगा ही। अब इसके आगे एक बात और है, कभी वो प्राणमन तो होगा, प्राणमन तो नहीं रुकेगा, लेकिन यदि कर्म का निमित्त नहीं होता और हम गाली नहीं देते तो उसका द्वेष रूप प्राणमन नहीं होता, गुस्से रूप नहीं होता, होता तो प्राणमन चारित्र गुण है तो उसका प्राणमन तो रुकता नहीं क्या, लेकिन हम गाली नहीं देते और वहां कर्म का उदय नहीं होता, अंतरंग और बहिरंग दोनों निमित्त नहीं मिलते तो क्रोध रूप प्राणमन नहीं होता, तो काय रूप होता बताओ, क्षमा रूप हो जाता है, सही बात है, सही हो जाता है कि क्षमा में तो किसी कर्म का निमित्त नहीं चाहिए, और निमित्त भी चाहिए तो क्षय रूप निमित्त चाहिए, क्षयोपम रूप निमित्त चाहिए। लेकिन कहते हैं कि वो भगवान आत्मा में रागादि रूप प्रणमन करने की भी शक्ति है, इसका नाम विभाव शक्ति है, एक प्रणमन शक्ति एक वैभाविक शक्ति, ये दो मिलके वो रागादि रूप प्रणमन हो जाता। अब आप ये कहें कि नहीं नहीं वो नहीं होता, तो अब वो अज्ञानी की बात चल रही है, जरा समझना, बहुत मार्मिक पॉइंट है राजेंद्र कुमार जी। तो फिर वो क्षमा भाव रूप प्रणमन हो जाता, और समझ के बिना क्षमा होती नहीं, और संबंध संतोषी है नहीं, क्यों क्या होता बोलो। एक तो ये प्रश्न ही बेहुदा है कि कर्म का उदय नहीं होता और सामने वाला गालियां नहीं देता, ये काल्पनिक है, काल्पनिक ना। खैर इसे अपन मान लो, तो वो कहते हैं कि जब सम्य दृष्टि नहीं है तो उस वक्त इसके विभाव रूप प्राणमन की ही योग्यता है, समझ गए ना। तब से वो विभाव रूप मंद क्रोध रूप होगा, तीव्र क्रोध रूप होगा, समझे ना। वितराग भाव रूप प्रणमन होने की क्षमता ही नहीं है इस वक्त उस पर्याय में। पर्याय के योग्यता स्वभाव के योग्यता की बात नहीं है क्या। जब तक सम्मा दर्शन नहीं हुआ तब तक किसी भी जीव की में उत्तम समाधि भावों रूप प्रणमित होने की योग्यता ही नहीं है। अब देखिए ये जो निष्कर्ष है इससे कितना अंतर आता है कि पहले तो कहता गाली नहीं देता तो गुस्सा नहीं आता उसे, तो फिर वो उत्तम समारूप रहता है, इसका मतलब ऐसा वो मानता है। तो गुस्से को पूरा उत्तरदायित्व तो वो सामने वाले की गाली पे डाल दिया, तो इससे नुकसान क्या हुआ कि अब जब जब मेरे को गुस्सा नहीं आए इसके लिए उसे मैं गाली नहीं देने दू। अब एक के साथ तो ऐसा हो ही जाए। अब लोक के जितने भी पदार्थ हैं जीव गाली देने वाले वो सारा कोई मुझे गाली नहीं दे, कोई मेरे को छेड़े नहीं, मेरे कोई मेरे को चढ़ाए नहीं है? तो ये सारे जगत के ऊपर इसका काम चला जाता है। अब मुझे गुस्सा नहीं आने के लिए ये करना चाहिए। और लोग उपदेश देते हैं कि तुम दूसरों को गालियां मत दो तो दूसरे तुम्हें नहीं देंगे, सुधर जाओ, ख्याल जाए ना ये। लेकिन सर्वज्ञ को भी गाली देने वाले हैं ना लोग में, वितरागी भगवान को भी मैं अज्ञानी मिथ्यादृष्टि कहने वाले लोग हैं ना, भगवान महावीर के भी विरोधी हैं ना इस जगत में, बोलिए। माने ये उपाय जिसकी तरफ हम मुड़ रहे हैं वो सही नहीं है, वहां से हटाने के लिए आचार्य ने कहा भैया ये तो बहिरंग निमित्त है, इसमें क्या दम है, अंतरंग निमित्त तो कर्म का उदय है, तो कर्म का उदय भी जड़ है। अब उसको हटाने में लग गए तो एक को जड़ को हटाएगा दूसरे जड़ को हटाए। अब वो मिथ्यात्व हटे बिना हटना नहीं है, और मिथ्यात्व इस मान्यता के साथ हट ही नहीं सकता, क्यों पर मैं पर कहते तो नाम क्यों, उसी तरफ प्रयत्न करना है ना। मिथ्यात्व नामक कर्म भी तो पर ही है ना, पुद्गल ही का बना हुआ है ना। तो अब क्या उपाय है, वो जो क्रोध रूप पर्याय आ रही है वो उस जीव की ही परिणाम वैभाविक दो शक्तियां हैं, और उनका उस समय के प्रणमन की योग्यता से ही हुआ। ये गुरुदेव ने बहुत बारीकी से इस बात को समझाया जो लोगों की समझ में नहीं आता। अब इसमें हमें लगता है कि जो गलती हम अभी सामने गाली देने वाले के माथे मर रहे थे और कर्म के उदय के नाम पे मर रहे थे वो हमने अपने आत्मा में ले ली, ये कौन सी बुद्धिमानी की क्या। यहां कोई ऐसा कितना काम हुआ और वो किसी दूसरे के माथे पे मरा जा रहा था, ये समझे ना, दूसरे के नाते में मरा जा रहा था तो हमने उसको अपने माथे पे लिया, तो हम कहते हैं हमें कौन सी बुद्धिमानी की, साले को जाने दे दीजिए। कश्मीर में अशांति क्यों है, तो जो अशांति करने वाले आतंकवादी हैं वे कहें कि मुख्यमंत्री आयोग है, ये हिंसा को रोक नहीं पाया, ये लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं कर सकता है, छोकरा को बैठा दिया है गद्दी में क्यों। अरे झगड़ा करने वाला तू है, तू अशांति फैलाने वाला तू है, हत्याएं करने वाला तू है, तो अपने ऊपर तो लेता नहीं है, और वो मुख्यमंत्री आयोग हो सकता है, मुख्यमंत्री भी आयोग होगा कि नहीं होगा क्यों क्यों। और मुख्यमंत्री कहे मैं क्या करूंगी, तो आतंकवादियों ने किया तो भी ये कहेंगे कि नहीं साहब आपको अपने नैतिक जिम्मेवारी तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, कहते 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 हम जानते हैं आपने कुछ नहीं किया लेकिन नैतिक जिम्मेवारी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। हाँ मैं तो कड़क ऑर्डर दे दिया था पुलिस ने, पुलिस ने नहीं सुनी, उन्होंने नहीं की कार्रवाई, तो फिर तो आप योग्य प्रधान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सिद्ध हो जाएंगे कि पुलिस वाले ने आपकी नहीं सुनी क्यों, एक कर्मचारियों ने मेरी नहीं सुनी ऐसा कह कर क्या कोई आदमी उस अपराध से मुक्त हो सकता है? तो वो कहते हैं इसे ऐसा डर लगता है कि जबरदस्ती जो दूसरों के माथे पे सारा जगत मान रहा है काय को अपने अंदर मुह राग देश के भाव हो रहे हैं क्रोधादि, उनके लिए जिम्मेवार कर्म के उदय को सामने वाले को मान रहा है और इसे जबरदस्ती ये अपने माथे पे चेता रहे हैं और अपने को ज्ञानी कहते हैं। अरे ज्ञानी तो जगत में उसे कहते हैं अपन ने भी हत्या करी हो तो दूसरे के माथे मर जाए जीत जाए अपन जा करके क्यों, अच्छा वकील तो उसे कहते हैं और ये तो खुद ही कह रहे मैं स्वीकार करता हूं इनकी कोई गलती नहीं है, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी यदि काई अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं सुनो कि एक कह के हमने कुछ खोया नहीं है कुछ पाया है। क्या पाया भैया तुमने गलती स्वीकार करके कि वो गलती मेरी गलती से हुई तो मैं उस गलती को मेट सकता हूं क्योंकि मैंने गलती की तो मैं मेट सकता हूं, यदि मैंने किए ही नहीं तो उस गलती को मैं कैसे मेट सकता हूं। आप समझ जाएगा नहीं है? तो हमने उसे स्वीकार करके उससे बचने का उपाय अपने हाथ में ले लिया है, स्वाधीन हो गया उसके लिए, अब हमारा काम सरल हो गया। देखो एलर्जी होती है ना, एलर्जी तो खाने पीने की चीजों से होती है, दवाइयों से होती है और बाहर के एनवायरमेंट से होती है, धुआं हो धूल हो इनसे होती है, इन सब चीजों से होती है, तीन तरह की एलर्जी होती है। तो जब कोई एलर्जी से बीमारी हमको हुई, जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, खुजली हो गई, ये सब एलर्जी की बीमारियां हैं 99% और कारणों से भी हो सकती है 1%। तो हम डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताओ हमें कि ये हमने क्या गलती की इसकी वजह से ये हुई, तो वो कहते नहीं तुमने कुछ गलती नहीं की, हम दवाई दे रहे हो चुपचाप खा लो वो ठीक हो जाएगी। तो समझदार आदमी को संतोष नहीं होता, वो कहता अब तो हम बहुत बुरी हालत में फंस गए कि हमारी गलती के बिना ही हम बीमार हो जाते, अरे हमारी गलती बताता तो हम उसे सुधार लेते और अगले साल बीमार नहीं होते क्यों। वो ये बताना चाहे तुम तो हमारी गलती बताओ क्यों बताओ, और वो डॉक्टर गलती बताए क्यों, वो हमारे हित में है कि नहीं बताए वो हमारे हित में है। वो ये कह के जरा एलर्जी की जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं इन चीजों के खाने से तुम्हें एलर्जी है, छोड़ दो तैयार है क्यों, कि उन चीजों के खाने में जो हमें आनंद है उससे उससे खाने से जो हमें तकलीफ हो रही वो बहुत ज्यादा बड़ी है क्यों, कि दवाई तो हाई दवाई भी खाएंगे। लेकिन वो कहता है कि भैया हम तुमसे कह रहे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना कोई दवा से है तुम्हें ना कोई खाने पीने की चीज से है, काय से है, ये वायुमंडल से है, ये आकाश में बादल आए ना और उनसे जो नमी आई उससे तुम्हें एनर्जी है। बोलो क्या कर, अब हम आकाश के बादल हटा सकते हैं क्या? इसलिए तो कहते हैं तुमसे कह कारण वारण मत खोजो, ये तुम सांस लेते हो ना इसे दमा हो जाता है, हवा में ऐसे तत्व हैं अभी, अब हम क्या करें, फिर हमें ये करना पड़ता है जैसे अभी गोष्ठी की थी हमने पर्यावरण की शुद्धि के लिए, भैया पटाखे मत चलाओ इससे फिर लोगों को दमा वालों को बहुत तकलीफ हो जाती है, ये अपने बोल रहे थे ना। अब पर्यावरण को शुद्ध करना इतना आसान है क्या, यदि हमसे कहते कि तुम केला मत खाना तो हम तो जिंदगी भर को छोड़ देते हैं, हमसे एक कहते ये दवाई नहीं खाना तो हम छोड़ देते। लेकिन अब ये सारी दुनिया में हवा में नमी है, हवा में धूल है, हवा में मिट्टी है क्यों, अब उसकी वजह से होता है तो तो अब हम क्या करें बोलिए। तो यही बात यह है कि अभी हम ये मान रहे हैं कि हवा में कोई भी कहीं गालियां देगा, कहीं भी कुछ हो जाएगा, कहीं कोई कर मैंने जो बिल्कुल कर्म पद के अधीन हमारी थी, अब हमें पता चल गया कि हमारे में भी राजरूप प्रणोन करने की योग्यता थी, ख्याल में आई ना, ये हमारी गलती से ही हुआ है। अब हमारे अंदर अंदर बात आ गई, दिखता ये है कि हमने बहुत बड़ी गलती की ये स्वीकार करके, लेकिन वास्तव में बात अपने हाथ में लेना है। अब वो कहते हैं कि हमारी गलती से, पर्यागत योग्यता की गलती से यदि ये हुई है तो पर्यागत योग्यता ऐसी बनी रहेगी और वो होता रहेगा। सबसे समस्या तो ये है ना, अब उसे योग्यता को थोड़ी मेट सकते हैं, योग्यता तो कहते ही उसे हैं जिसे मेटा नहीं जा सके। अब एक समस्या हमारी खड़ी हो, अब गुरुदेव श्री जी इसका जवाब देते थे, बहुत ही गजब का था वो लोगों के गले उतरना बहुत कठिन है। वो कहते थे कौन है तुझे ये बात स्वीकार है, यदि तेरी ये बात स्वीकार है तो तेरी भविष्य की पर्यायों में ऐसी पर्यायगत योग्यता होगी ही नहीं ना, जब नहीं होगी तभी तुझको ये बात स्वीकृत होगी। अरे कुछ समझ में नहीं आया, वो ये कह रहे हैं कि इलाज तो बस तेरे मानने में ही हो गया, क्योंकि अब तेरी उस रूप परिणमित होने की योग्यता ही नहीं होगी भविष्य में। गुरुदेव का प्रसिद्ध उदाहरण है, कभी वो कहता है केवल जी के ज्ञान में जैसा देखा होगा वैसा ही होगा, वैसे हमारे यदि केवल जी भगवान ने अनंत भव देखे हैं तो हम उनमें से एक भी कम नहीं कर सकते। बोलो ये बात 100% सही है, क्यों? तो वो कहते गुरुदेव कि बात तो 100% सही है, लेकिन कौन है, किसके लिए सही है? तू जो ये कह रहा है कि केवली भगवान के ने देखे होंगे, तो तुझे केवली की श्रद्धा है कि नहीं, बोल बता। कि वैसे ही गप ठोक रहा है, क्योंकि हम कहते हैं तो हमारा गला बंद करने के लिए बोलता है कि केवली भगवान ने हमारे अनंत भव देखे होंगे। क्या तुझे उस केवली भगवान का स्वरूप ख्याल में है? तू जानता है कि कोई केवल ज्ञान ऐसा होता है? हाँ कह रहा हूं ना कि मैं मानता हूं। अरे तू मानता होता तो तेरा ऐसा प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। क्यों? कि जिसके ज्ञान में केवल ज्ञान का स्वरूप आता है, समझना, जिसको केवल ज्ञान समझ में आता है, उसके अनंत भव होते ही नहीं है, केवल ही क्या देखेंगे। जब वो अनंत भव नहीं, भव के अंत का काल आता है, तब ही उसे केवल ज्ञान की श्रद्धा, केवल ज्ञानी की नहीं, केवल ज्ञान की श्रद्धा होती है। हमने केवल ज्ञानी पे शंका करके कि भगवान महावीर भविष्य की जानते थे कि नहीं जानते थे, ख्याल में आई ना, महावीर को गाली नहीं दी, अपने उस ज्ञान स्वभाव से इनकार किया कि जिसमें तीन लोक और तीन काल के सब पदार्थों की जानने की सामर्थ्य, समझ रहे हैं? कितने लोगों तक पहुंची मेरी बात मुझे अंदाजा नहीं लग रहा है, फिर एक दफे से बोलता हूं। क्या वो ये कहते हैं कि ऐसा जो आदमी कह रहा है कि हमारे केवल जी ने अनंत भव देखे होंगे तो हम एक भी कम नहीं कर सकेंगे हमारे, तो ये जो भाषा तू ऐसा बोल कि जिसके अनंत भव हैं, केवली ने जिसके अनंत भव देखे, वो एक भव उसके कम नहीं हो तो हम मान लें, वो तो ऐसी भाषा बोलता है कि हमारे भगवान जी अनंत भव देखे हैं, हम एक भी कम नहीं कर सकते हैं, तो हमें माता क्यों मारते हो कि हम ये मान लें, ये मान लें, ये मान लें। तो वो कहे तुझे तू तो हमारा गला पकड़ने के लिए कहता है, तुझे केवली की श्रद्धा ही नहीं है, केवल ज्ञान का स्वरूप ही तेरे ख्याल में नहीं है, क्या स्वरूप है केवल ज्ञान का? कि जिसको केवल ज्ञान की श्रद्धा होती है उसके अनंत भव होते ही नहीं। देखो आज इसे करुणा नियोग से मैं पुष्ट करता हूं, करुणा नियोग से कैसे होगा? वो बोलते ना कौन सी लंबी है कि जिसके इतने भव रह जाते हैं तभी उसके बात समझ में आती है, आ जाता ना, ध्यान नहीं आ रहा है, करुणा नियोग कही है कि वो समझाते हैं ना ये। हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहे तो सम्यक दर्शन की बात समझ में आएगी। तो जो वो जिसका अभी अनंत एक पुद्गल परावर्तन काल भी है तो उसके समझ में नहीं आएगी। और एक और जितने तुमने अच्छा बता दिया, लेकिन इससे भी और अच्छा है, इससे भी और बहुत अच्छा है। करुणा नियोग कहता है, वो कहता है ना अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण रहना चाहिए। क्या बोलते हैं? पांच लब्धियों में है, प्रायोगिक लब्धि में है कि उसका वो मुख्यात्व कर्म का उदय अंता कोड़ी की सत्ता माने स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी होना चाहिए, कोड़ा कोड़ी के भीतर ही भीतर होना चाहिए तो ही उसे ये बात प्राप्त होगी। ये क्या बताता है? कि उसको ये बात समझ में आएगी तो उसके पहले उसको ऐसी स्थिति आ जाएगी तब आएगी समझ में, उसके पहले आएगी नहीं। हमारे समझ में यदि आज आनी नहीं आनी रही है तो हम तो ये कह देंगे कि तेरी अभी स्थिति हो जाना है। करुणा नियोग तो वास्तव में यही जवाब दे, क्या कहेंगे? पुरातन सार की गुन्यासी में गाथा में कहा ना, गुन्यासी में गाथा में क्या कहा कि ये जिसकी समझ में ये बात नहीं आ रही है उसके क्या भव है, क्या है, हाँ, महाशक दुख संकट निकट है। ये मार्मिक बात है, उसके महादुख संकट निकट है, इस स्थिति का नाम पड़ा है। तो महादुख कौन सा है, महासंकट कौन सा है? निगोद में जाना, इससे बड़ा तो दुख और संकट कोई जगत में है ही नहीं। यानी वो जल्दी से जल्दी निगोद में जाना है, पुण्य पाप में अंतर नहीं, ऐसा कुछ प्रकरण चल रहा है ना। ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही है तो उसके महादुख संकट निकट है। क्या कह रहे हैं? ये मनुष्य गति तुमने प्राप्त की, हमने प्राप्त की ना, ये बात हमारी समझ में नहीं आई इस भव में, तो समझ लेना हमारे लिए महादुख संकट निकट है, माने निगोद पास में है। कि क्यों? कि अभी हम एकदम मनुष्य प्रजा चली जाएगी, फिर कुछ दिन शायद हम सैनी प्रजा में रह जाए तो तुरंत में तो और भी बहुत दुर्लभ है ना, नरकादिक में भी अत्यंत दुर्लभ है, फिर असैनी में चले गए तो बात खत्म। क्यों? और भव पूरे कर करा करके जो अंतम मनुष्य होगा तो फिर जाके लौट के कहां पहुंचना है, निगोद में। तो उसके महान अब उनको ऐसा अंदर से फीलिंग होना चाहिए, अब ऐसे लगता लोग मुझे कह रहे कि हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम निगोद में जाओगे, तो गाली समझते हैं। एक गाली नहीं है, ये वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है, स्वरूप ऐसा है वस्तु का। आप एक एक, एक समय की कीमत नहीं करते हैं ना, अब कीमत करते हैं तो क्या करते हैं कि हम तो क्या करें, चार घंटा पूजा करते हैं, फिर आठ घंटा ये करते हैं, फिर हम समाज की सेवा में ही लगे रहते हैं, फिर मंदिर की झाड़ू लगाते हैं, क्यों क्यों? अब और क्या करें, मर जाएं? कि मर तो जाओगे, उसमें क्या सके लेकिन जब प्रति समय मर रहे हो उसकी बात करो, तो मंदिर की झाड़ू लगाना भी पाप है। यदि तुम्हारी जरा से भी प्रमाद के कारण उसमें जितने जीव मरेंगे उसके गारंटी से पाप लगेगा, इस वजह से कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है कि तुम झाड़ू अपने घर की लगा रही थी कि मंदिर की लगा रही थी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, थोड़ा सा पुण्य बन जाएगा, एक्सरसाइज की कोई कीमत नहीं होगी। थोड़ा सा पुण्य बन जाएगा माने तो 25 डंडे पड़ते थे उसमें एक डंडा कम पड़ेगा, 24 पड़ेंगे। समझिए, थोड़ा आप उस पाप से कैसे बच सकते हो, बहुत गंभीर बात है। अभी मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता हूं। ऐसी जो काम हम अपने घर के लिए करें और वो पाप है, वो काम मंदिर के लिए धर्म कैसे हो जाएगा? वो पाप क्यों है, मैं आपसे पूछता हूं। इसीलिए पाप है ना, क्योंकि वो हिंसा है, जीवों का घात हो रहा है। क्यों? अपने लिए घात करें तो धर्म पाप है, और दूसरों के लिए घात करें तो धर्म हो जाएगा। क्यों? अपने लिए झूठ बोलेंगे तो पाप है, और मंदिर के लिए झूठ बोलेंगे तो धर्म हो जाएगा, झूठ भी धर्म हो जाएगा। हैं ऐसे लोग बताने वाले, हम क्यों बोलेंगे मंदिर के लिए झूठ? कैसे नहीं बोलोगे? यदि मंदिर का मुकदमा लड़ने जाओगे तो वो भी वकील करने पड़ेंगे। वो वकील जैसी बोलेगा झूठ सच्ची, वो बोलनी पड़ेगी। हैं? वो कहेगा कि इतनी घूस लगेगी, मजिस्ट्रेट को देनी है तो घूस देनी पड़ेगी। क्यों? उसमें पार्टी देनी पड़ेगी तो हम पार्टी देनी पड़ेगी, और हम शराब पिलाई जाएगी तो शराब पिलानी पड़ेगी। ख्याल में आई ना? तो वो सब धर्म हो जाएगा। वो काम तो नक्शा पास कराना है तो घर का पास कराओ तो मंदिर का, वो पैसा नक्शा वो पास करने वाले का मंदिर थोड़ी है। क्यों? वो तो नाश पर पास करवाई के जो लेगा वो ले गई। जहां जितना झूठ बोलना पड़ेगा वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। क्यों? चोरी, घूसखोरी, ये सब चाहे मंदिर के लिए करे चाहे घर के करो। क्यों? वो कहते क्या करें, रुक जा। अरे हमें क्या, मंदिर कहता है हमें क्या करना, हमें कहां पैसे की जरूरत, हम कहां कह रहे हैं कि तुम जाके चोरी चपोटी करके लाओ, झूठ बोल के लाओ, ठग कर दूसरों को पैसे लाओ। हम क्यों करेंगे? हमें ये काम करना होता तो अपने घर के लिए ही करते ना, तो घर के लिए तो किया नहीं। क्यों? दो रोटियां खा करके अपनी जिंदगी निकाल दी है, हैं? अब तुमको मंदिर के लिए करें, धर्म के नाम पर करें, ठगर जी के लिए करें, हमसे नहीं होगा। है? कोई भी पाप आप समझ रहे ना, चाहे परिग्रह जोड़ना है समझ लो, आप सब धंधे ही है। तो कोई फर्क है ना, वो थोड़ा सा पुण्य लग जाएगा। हम क्यों कह रहे हैं वो लग जाएगा तो आटे में नमक जैसा होगा, वो नरक में पहुंच गए तो वो कैसे कहां भोगने में आएगा? ये कर्णा जी को से पूछ लेना, उनका वो सारा पुण्य पाप में बदल जाता है। वो संक्रमण वगैरह इसके लिए ही है, सारे पुण्य को पाप में बदलने के लिए। एक किलो राख में एक तोला शक्कर मिला दो तो शक्कर भी राख हो जाएगी। एक किलो शक्कर में एक तोला राख मिला दो तो वो राख शक्कर हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही पाप कर्म ज्यादा हुआ तो पुण्य पाप में बदल जाता है, और पुण्य ज्यादा हुआ तो पाप पुण्य में बदल जाता है। ये तो अन्याय है। अन्याय क्या कैसे होगा? हमने पुण्य बहुत ज्यादा किया, हम स्वर्ग में चले गए। अभी जब पाप किया था वो उदय में आए तो स्वर्ग में ऐसे संयोग ही नहीं है कि वो उदय हमको मिलेगा भोगने को। वो तो पुण्य में बदल के नहीं आएगा तो क्या करेगा? वहां कुछ ऐसा है ही नहीं जो तकलीफ खड़ी हो। और नरक में गए, अब वहां कितना ही पुण्य बांधा, लेकिन वो क्या है? मैं कहता हूं ये तीर्थंकर प्रकृति बन रही ना राजा सेना को, तो दो तीन डंडे कम पड़ते होंगे उनमें। क्या तो बाकी के नार की दया कर देते होंगे, हाँ साहब 6 महीना पहले ही बाड़ा बना देते हैं। देखिए 6 महीने की तो रोता है तू कि 6 महीने पहले बाड़ा बना देते हैं, लेकिन जो 83,000 वर्ष की उम्र है ना, तो 6 महीना कम हो 83,000 वर्ष हो तो 6 महीना ये क्या हुआ उनका क्या हुआ बताइए। तीर्थ के बिगड़ी बांधी है तो और पुण्य भी तो बांधा ही होगा ना, क्या हुआ। इसलिए बंद बंद के चक्कर में कुछ मत रहो कि कर्णान योग के सिद्धांत से लोग क्या अर्थ निकालते हैं। शांति जी कर्णान योग वाला कोई दिखता नहीं है यहाँ, सुन तो रहे हैं लोग मैं जानता हूँ, अन्ना जी तो सुन ही रहे होंगे। मैं कहता हूँ कि देखो बदल सकते हैं हम, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पाप को हम बदल लेंगे। अरे इसकी फिक्र उसकी बात कहें बहुत जीरो की बात है कि कौन लाखों लोग का पुण्य पाप में परिणमित होता है क्यों। इसलिए इसके बदला बदली के चक्कर में मत पड़, हमें तो कर्म ही नहीं बांधना, हमें तो बंद से ही ख्याल में आई ना उस बात को ही सोच कि इनका क्या भरोसा ये पुण्य भी पाप में बदल जाएगा, ऐसा सोच पाप पुण्य में बदल लेंगे हम, क्या ये बारे बारे बात कर लो पाप बाद में पुण्य करके बदल लेंगे हम, कितना 1 करोड़ रुपया कमाएंगे और 1 लाख देके मुझे सब पुण्य में बदल लेंगे क्यों। तो 1 लाख का पुण्य 1 करोड़ के पाप में बदलेगा काय में बदलेगा बोलिए, वो तुम्हारा पुण्य भी काय में बदलेगा पाप पुण्य में बदलेगा। वो तो ऐसी बातें हैं कि सरजा बेटा सूली पे भरा करे भगवान, तू तो हमें दे दे हमारा काम निपट जाए, और तेरे को हमने कह दिया तो हाँ तेरे को ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब जो होगा सो तो भगवान जाए सत्यवाद क्यों नहीं बोलते हो, पाप का पोषण क्यों करते हो। मुझसे अभी कहीं पे था सूरत में या बड़ौदा में एक बहुत मार्मिक प्रश्न पूछा गया था, और वो एक अजैन ने पूछा था, अब नाम याद आ गया मुझे, एक डॉक्टर भानु वर्मा करके डॉक्टर है अजैन, और वो एलर्जी का डॉक्टर है, वो मेरे व्याख्यान सुनने रोजाना आता था, ख्याल में आई ना। और फिर उसे मालूम पड़ा कि मुझे एलर्जी है, तो मेरे इलाज के लिए भी मेरे घर आया और वजब किया, उससे कहा मेरे को आधा घंटा से चर्चा करनी है, तो उसको मुश्किल से मैं समय नहीं दे पाया, मंदिर के पीछे ऐसे प्रश्न के बारे कमरे में बैठ के मैं चलो अभी तुम कर लो जल्दी बात क्या करोगे, तो उसने ये कहा मुझे मान ये बात पूछी क्या कि साहब हमने सुखा है कि जैन धर्म में ये लिखा है कि कभी कभी झूठ बोलना भी धर्म है। अब उसने क्या सुनिया, तो ऐसे कई उदाहरण है शास्त्र में वो परमिशन दी गई है, तो आपका क्या कहना है। मैंने कहा ये बिल्कुल ही गलत बात है सुनना, और उदाहरण क्या दिया जाता है वो मैंने उन्हें सुनाया था, वो तो मैं भी सुना देता हूं, ये टीवी पे जाएगा तो सारी दुनिया भी ये सुन लेगी कि नकली पोजीशन खड़ी करके जिसकी संभावना बहुत क्षीण है और उस झूठ बोलने की परमिशन दिलाना किसी तरीके से वो सबसे बड़ी गलती है। बोले क्या मतलब। मैंने देखो कि एक गाय जा रही थी और एक साधु महात्मा वहां बैठे थे, जो बताते ना लोग, अब वहां से कसाई दौड़ा दौड़ा आया पीछे पीछे और कहा महात्मा जी गाय कहाँ गई है, तो गाय इधर को गई थी, तो महात्मा जी ने कह दी इधर को गई है, तो गाय को बता लिया। इसलिए गाय को बताने के लिए अहिंसा की दृष्टि से इतना झूठ बोलने की परमिशन जैन धर्म में है। ऐसा उदाहरण देके बहुत पंडित लोगों को बरगलाते हैं। अब मैंने उनसे कहा क्यों भाई साहब ऐसी घटना कोई बहुत संभव है कहीं, गाय भाग रही हो, कसाई पीछे पीछे दौड़ रहा हो, और महाराज से पूछे और महाराज ने बता ली तो क्या घंटे को बता लेंगे महाराज। आखिर वो गाय ट्रेन में बैठ के तो भाग जाने वाली नहीं है, वो एक घंटे बाद पकड़ लेगा वो, क्यों? और उसके लिए महाराज ने अपने जिंदगी भर का सत्यव्रत तोड़ करके झूठ बोल दिया। तो क्या बोले बता दे भाई हमको भी दो पर। अरे मैंने कहा भैया एक तीसरा रास्ता भी है ना, कि क्या कि महाराज चुप नहीं रह सकते, हर हरेक के हर प्रश्न का जवाब देना जरूरी है। कोई ये पूछे कि गाय किधर को गई है, इस प्रश्न का उत्तर देना हर महाराजों को जरूरी है, क्यों वे चुप नहीं रह सकते हैं, एक मौन भी है ना, चुप रहेंगे तो भी तो उनने नहीं बताया, ख्याल में आई ना। इसलिए झूठी कल्पना करके झूठ को बोलने की परमिशन देना। मैंने एक सच्ची घटना सुनाई थी, जब हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे और 11 वर्ष के रहे होंगे, दादा आपको याद है क्या नहीं, हम एक नाटक देखने गए थे जो वहां पर वो है ना गुप्ता स्टोर के सामने वो स्टेज बनती थी, वहां हो रहा था। मैं नाटक बताता हूं तो आपको याद आ जाएगा। उस नाटक में क्या दिखाया जा रहा था कि एक वेश्या ने एक सेठ को फंसाया और वो सेठ सुदर्शन सेठ जैसा था, बहुत शुद्ध सात्विक सदाचारी, पकड़ में आ गया था वहां। तो वेश्या उसे कह रही थी कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी, और मेरी बात मानने का मतलब समझ गए आप सब लोग क्यों, तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी और उसकी हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। अब शेर बहुत तकलीफ में गई, जी मर जाएगी तो हत्या का पाप मुझे लगेगा, अब इसलिए मुझे कोई करना चाहिए। माने इस तर्क से उस सेठ के भ्रष्टपनों का औचित्य सिद्ध किया जा रहा था। उस वक्त भी जब मैं 11 साल का था, मेरे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या बेवकूफी है, यदि ये मर जाएगी तो इसकी जिम्मेवारी इसकी है, ये तो कले कहेगी मैं जहर खा लू, नहीं तो मेरी मर ये जहर खा लेगी तो मैं जहर खा लूंगा। अरे छेद में मर जा, हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है, हम क्यों भ्रष्ट होंगे कि यदि मैं नहीं इसका साथ समागम करूंगा तो ये जहर खा के मर जाएगी, इससे बचा, इसको मैंने बचाया तो मैंने जीव दया की है, क्यों दया इसका नाम है कि जो हमारी न्याय की मर्यादा है उसमें हम गए। कोई मांस भक्षी यदि वो हम उसे मांस नहीं खिलाएंगे तो मर जाएगा, शेर है तो हम मांस खिला देंगे शेर को, क्यों ये कौन सा तर्क है। उस वक्त भी मेरे दिमाग में विद्रोह उठा था 11 वर्ष की उम्र में, जब मुझे पढ़ने के लिए गए हुए 1-2 साल ही हुए होंगे, क्योंकि मैं 8 वर्ष की उम्र था तो अपने गांव में ही नंगा फिरता था, ख्याल नहीं ना। अब 10 वर्ष की उम्र में वहां चला गया था पहली क्लास पास करके। बस तुम लोग लक्ष्मीनंद कौमदी 10वीं क्लास पास करके पढ़ता है, मैंने पहली क्लास पास पढ़ के सीधी लक्ष्मीनंद कौमदी पढ़ी है, और उस वक्त भी मैं अपने सब सहपाठियों को पढ़ाता था। क्या 13 विद्यार्थी मेरी क्लास में थे तो 12 मेरे गुरुजी कहते थे हुकुमचंद समझ में आ गया कि हाँ आ गया है, तो इन्हें समझा दें। उसे कौमदी को लगाना बोलते हैं, आज बोलते कि नहीं बोलते कि कौमदी लगवा देना है, तो ये कर रहा है। तो उस वक्त भी मेरे के नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये टोटली रॉन्ग है, ये भी मैंने उसको बताया डॉक्टर को। कहीं कोई ऐसा कोई घटना घट गई और किसी व्यक्ति ने ऐसा प्रयोग कर भी लिया हो तो वो उसके जैन धर्म की नासमझी की वजह से है। टोडरमल जी कहते हैं ना कि ग्वाले ने मुनिराज को तपाया तो ग्वाले की नासमझी की वजह से ग्वाले की हमने प्रशंसा कर दी, लेकिन वो काम सोचकर और सज्जनों को तपाना उचित नहीं है। ग्वाले ने तपाया था उसी प्रशंसा के लिए, उसकी वजह से वो मोक्ष गया और ऐसा हो गया, फिर उसमें कुंद कुंद बन गया, फिर ये हो गया ये हो गया, सारी वजह उसी घटना से सब कुछ हो गया। क्यों ऐसी गलत उदाहरण करके पाप का पोषण किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, समझे ना। मेरी जो शुद्ध सात्विक वृत्ति है मैं उसके भीतर ही परोपकार कर सकता हूं, समझ ना। लेकिन मैं अपनी मर्यादाओं को भंग करके, मैं अपने वित्त नियमों को भंग करके और खुद पाप में पढ़कर दूसरे को पाप से बचाऊं, ऐसी करुणा जैन धर्म में नहीं है। तो क्या करते हुए सेठ जी फिर बोलो, हेलो गुरु आप बताओ पंडित जी आपके लिए क्या है। यदि वो सेठ जी पंडित जी थे तो उसे समझाते क्या कि भाई तुम्हें ऐसी मर जाएगी तो नरक में गोद जाएगी, एक खोटा काम तो ये कर रही है, आत्महत्या करके वाले स्वर्ग नहीं जाते हैं, नरक ही जाते हैं, हैं? मेरे माथे क्यों लगेगा, मैंने क्या किया इसमें, मैं क्या कर रहा हूं। श्रीमद का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, शायद पहले मैंने दिया है क्या, नहीं, गांधी जी जैसा व्यक्ति जो देश में प्रसिद्धि पा चुका था, श्रीमद के पास गए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हम पे आक्रमण करे तो हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक तर्क खड़ा किया, एक आदमी मेरी छाती पे बंदूक लगा दी, मेरे हाथ में भी बंदूक है, मैंने भी बंदूक तान ली है, उसने तान ली है और मैंने तान ली है, अब एक सेकंड की देर है, यदि मैंने पहले चला दी तो वो मर जाएगा और उसने पहले चला दी तो मैं मर जाऊंगा, क्या अब सोचने का ज्यादा समय नहीं है, सेकंडों का काम है, अब आपकी क्या राय है। मैंने ऐसा नकली खड़ा किया असीमत के सामने, गांधी जी ऐसा श्रोता था और साधारण श्रोता होता तो भड़के के भगा देते, क्या बेवकूफी की बात भगा नहीं आते। अब गांधी जी जैसे आदमी सामने चुप रहे, वो पीछे ही पड़ गए, पीछे ही पड़ गए, तो क्या जवाब दिया उनने, उनकी आत्मकथा में लिखा है, नहीं उनके जो है ना वो कौन सा श्रीमद राय के पत्र वगैरह उनमें लिखा है, उसमें लिखा कि गांधी जी ने कहा कि मैं उस पर गोली चलाने की बात तुम्हें कहकर, है ना आपने कहा ना आत्मरक्षा है, हम तो विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं है, वजी नहीं है, भी नहीं है, कहकर अनंत काल तक संसार में घूमने की राय नहीं दे सकता। कहा कि तुम उसे मार दोगे तो तुम सीधे जेल जाओगे, केस चलेगा जो कुछ भी होगा, है ना, ये तर्क तो वहां चलेगा नहीं कि यदि मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे आधार पर तुम बच जाओ, क्यों और फिर अगले वक्त में क्या क्या होगा, और फिर वो गोली चला देता तो। अब सुनो इसका जवाब और बढ़िया है कि तुमने अपनी 80% जिंदगी तो जी ली है, अब ये बुढ़ापे की सड़ी सड़ाई जिंदगी रह गई है, क्यों इतनी सी जिंदगी बचाने के लिए, क्यों और अनंत भव बिगाड़ने को तैयार हो, जन्म ये गवर्नमेंट तो नहीं मान सकती, गांधी जी ने भी मानी कि नहीं मानी इसका सवाल नहीं है, क्या सवाल यह है कि श्रीमद ने क्या जवाब दिया, कहने साहब हम तो संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं, विरोधी के नहीं है, विरोधी को तो मार सकते हैं, अब ऐसे रास्ते निकाल निकाल करके उन्होंने कोई ये कोशिश नहीं की क्या, ये समझ लेना। पर किसी भी पाप का पोषण किसी भी कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। मेरा मैंने उनको बोला उस डॉक्टर को, तो तुम्हें बता रहा हूं कि मेरी बहुत स्पष्ट मान्यता है, जैन दर्शन के संदर्भ में मेरी और जैन दर्शन की, इन दोनों की ये स्पष्ट मान्यता है, और जहां तक मैं समझता हूं वहां तक की बात नहीं है जी, मैं पूरी तरह समझता हूं और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं, वो जमाना गया। मैंने कल परसों चर्चा की थी ना कि मैं छंद नहीं जानता हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, क्यों इसका जमाना गया। वो मैं क्या क्या जानता हूँ ये बताओ, बताना है तो है? और किस क्वालिटी के बल पर तुम ये बात है लिख रहे हो? छोटोमल जी कहते हैं हम बहुत सावधान करेंगे कि भ्रष्ट ना हो जाए, जीवन में भ्रष्टता ना आ जाए, फिर भी आ जाए तो हमारी तो जिम्मेवारी है नहीं, लेकिन हम कहना तो बंद नहीं करेंगे। वस्तु का स्वरूप तो हम बताएंगे और उल्टी परिणति करने के लिए हम बहुत सावधान करेंगे। तुम कहोगे ये सुन के कोई भ्रष्ट हो जाएगा तो हम और क्या कर सकते हैं, बस हम सावधान करेंगे, हम बताएंगे कि भ्रष्ट होने के लिए नहीं है ये बात है, फिर भी होएगा तो होएगा, हमारे माथे पर उसका कोई नहीं। उसके डर के मारे हम जैन तत्व का प्रतिपादन किसी कीमत पर बंद नहीं करेंगे। यहाँ क्या प्रकरण चल रहा है, ये बात क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि जिस जीव को पर्यायगत योग्यता से ही कार्य होता है, परद्रव्य का उसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं है, ये परम सत्य है। ये स्वीकार करके कर्म के माथे जो दोष बना जा रहा था और परद्रव्यों के माथे जो दोष बना जा रहा था, उससे हटाकर अपनी गलती स्वयं स्वीकार करने की तरफ लाए हैं क्या? और इसमें से ये रास्ता निकलता है कि हम अपनी गलती में गलती मानी ना, तो गलती मानना क्या, फिर हम सुधार कर सकते क्या? हो गया ना, अब और कर सकने के लिए क्या बाकी रहा? क्या आदित दीजिए भाई, समझना क्या नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री रेलवे दुर्घटना हो गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी ने तो स्वीकार किया ही नहीं, सारा देश नहीं 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 आपकी क्या गलती है, आपकी क्या गलती है, कि नहीं साहब मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, कि नहीं नहीं मैं तो नहीं थी, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, नहीं रहे तो क्या, उन्होंने गृह मंत्री बना दिया क्यों? और ये होते मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, तो कोई कैसे करता है, ऐसा क्यों दूंगा, मेरी क्या गलती है, फोरमैन की गलती है, तो हटा देते उसे सब करके और बाद में कुछ नहीं मिलता क्यों? अरे उसको उनने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मेरी जिम्मेवारी है, आखिर मैं गृह रेलवे मंत्री हूं, इस नैतिक जिम्मेवारी करके मैं इससे हटता हूं, तो फल मिल गया ना गृह मंत्री उसी वक्त, क्योंकि गलती स्वीकार कर ली तो एकदम बहुत बड़ा 99% काम तो हो ही गया। तू अशुद्ध निश्चय नए तक तो आ गया, दुभागा ने अतीत हो गया, ऐसा समझ में आई ना। अब तेरा संसार समुद्र का किनारा निकट है, अन्यथा ऐसी गलती तू अपने माथे पे स्वीकार करता ही नहीं। जिसकी समझ में अशुद्ध निश्चय ने आ गया, उसकी समझ में शुद्ध निश्चय ने भी गारंटी से आएगा आएगा और आएगा। ये प्रकरण चल रहा, उसकी बात कर रहा हूं मैं। 63 में कलश के बाद तत्काल आने वाली 126वीं गाथा की उत्थानिका में आत्मख्याति में मात्र तथा ही शब्द के रूप में दी गई है, लिख दिया तथा ही। अब ये तथा ही क्या होता है, ये तथा ही क्या होता है? अभी हमारे जो न्याय शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी तो सब समझते ही हैं, समझते हैं ना, कितने समझते हैं वे हाथ उठाए, पूछूंगा नहीं, घबराना नहीं, झूठा भी उठा दो। तथा ही न्याय शास्त्र में बहुत प्रयोग में आता है और इसका ये अर्थ होता है कि जो बात हमने अभी कही है ऊपर, अब उसी बात को और विस्तार से उदाहरण देकर समझाते हैं। ये अर्थ होता हर जगह आंख बीच के क्या, दो तीन चार शब्द हैं, ननु तथा ही किंचे क्या, किंचे माने दूसरी बात ये है, ननु माने प्रश्न उठाया जा रहा है, तथा ही माने उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। तो जो पिछले कलश में बात कही है अब उसी बात को आगे विस्तार से कहेंगे क्या। तो पिछले कलश में क्या कही है, स्वभावभूता निरंतराया स्वभावभूता परिणाम शक्ति है ना, कि जीव की प्रणमन की शक्ति निरंतराय है, उसमें कोई विघ्न नहीं है, कोई कर्म कर्म उदय अंतराय नहीं कर सकता, अंतराय कर्म भी अंतराय नहीं कर सकता, कोई प्रतिबंध गड़बड़ नहीं कर सकता, और अकेली यही नहीं हो पुद्गल की भी निरंतराय। और वे पांच दस गाथाएं माने ये तथा ही उन दस गाथाओं के बाद की बात को और स्पष्ट करते हैं। और क्या स्पष्ट करते हैं कि जो जिस भाव रूप परिणमित होता है उस भाव का कर्ता वो ही है, उसका जिम्मेवार वो ही है, इतनी सी बात है क्या। और इसलिए ज्ञान भाव का कर्ता ज्ञानी है और अज्ञान भाव का कर्ता अज्ञानी है, परद्रव्य का कर्ता न ज्ञानी है और न अज्ञानी है ना। तो इस तरह लिखा ना, अभी अभी कही गई है, अब उसी बात को विस्तार से समझाते हैं। एक जगह समझ लिया ना, तथा ही आए तो सब जगह लगा लेना आंख नीच के। इसका आशय यह है कि 65वें कलश में समागत भाव को ही आगामी गाथाओं में विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा। अब एक हवाल खड़ा हो गया 65वीं गाथा में क्या है, बोलिएगा ना। 65वें कलश में कहा गया था कि जीव अपनी स्वभाव भूत परिणाम शक्ति के कारण जिस जिस भाव रूप परिणमित होता है वह उन भावों का कर्ता होता है, अतः अब आगामी गाथाओं में उसी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं और ये गाथा करते हैं।